दशदशय चावदीहिरं पडमजिनं वोक्षम्णमिऊणन्तरं अनंतरुत्तुंगसन्नमय दुग्गेजं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, और जिन्होंने श्रीधरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये पांचवी पुस्तक में अभी हम 119 पृष्ठ पर आ गए हैं। उसमें ज्ञान मार्गणा की बात हम देख रहे थे, तभी हम नीचे से वो शंका, पहली वाली शंका, वहां से चालू करेंगे। कल उसके ऊपर पढ़ा था। देखो, गर्भोत्पन्न जीवों में व्यतीत किए गए 48 दिनों में, कौन से 48 दिन? हाँ, 119 पृष्ठ नीचे से छठी लाइन। तो ये 48 दिन कौन से? गर्भोत्पन्न जीवों में ये जो 48 दिन बताए हैं, वो कौन से है? हाँ हाँ, मगर कैसे काउंट करना, 48 कैसे लेना उसको? वो नहीं, देखो हमने देखा था ना, तीन पक्ष 15 × 3 = 45 हो जाए, और तीन दिन, ये 48 दिन होते। हाँ, गर्भोत्पन्न, हाँ तिर्यंच के गर्भोत्पन्न, तिर्यंच पहले हमने देखा था बहुत बार, तीन पक्ष तीन दिन और अंतर्मूर्त, ऐसा करके बहुत बार इसको देखा था। तो ये 48 दिन वो भूभूमि वाले वो नहीं लेना, 49 उसकी बात नहीं है, ये तीन पक्ष तीन दिन ऐसा लेना। तो कहते गर्भोत्पन्न जीवों में इतने दिन में अवधि ज्ञान उत्पन्न करके अंतर को प्राप्त क्यों नहीं कराया? अंतर को जो हमने देखा था, ये समूर्छन जीवों में बताया था, समूर्छन जीव वहां अवधि सम्यक तो प्राप्त करेंगे और बाद में एक अंतर्मूर्त में अवधि ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा लिखा था। तो यहाँ कहते हैं गर्भोजों में वो 48 दिन के अंदर ही क्यों नहीं उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न कराया? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उनमें भी अवधि ज्ञान की संभवता की प्ररूपणा करने वाले व्याख्यानाचार्यों का अभाव है। ऐसा उपदेश देने वाले कोई आचार्य नहीं मिलते, ऐसा कह रहे, ऐसा उपदेश ने ऐसा भी नहीं कहा, ऐसे उपदेश देने वाले आचार्यों का ही अभाव है। अब आगे पमत्त अपमत्त, ये कौन कौन से ज्ञान की बात चल रही है अभी अपने मार्गणा में, ज्ञान मार्गणा में मतिश्रुत अवधि की बात चल रही। तो उनमें पमत्त अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुचन अथ्य अंतरम निरंतरम। तीनों ज्ञान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर कहेंगे। एक जीवम पड़ुच जहन्येन अंतो मुहूर्तम। तीनों ज्ञान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीव विवक्षित ज्ञान के साथ अन्य गुण स्थान को जाकर, विवक्षित है या मतिशुद्ध की बात हो या अवधि ज्ञान की है, तो वो तो ज्ञान तो मतिशुद्ध हमेशा ही रहेगा, परंतु यह गुण स्थान पलटा, और फिर वापस आएगा उसी गुणस्थान में, तो अंतर सिद्ध होगा अन्य गुणस्थान को जाकर, और पुनः पलट कर सर्व जगन्य काल से उसी ही गुणस्थान को आए, इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण जगन्य अंतर लब्ध हुआ। छठा सातवां लेना इसमें। अब उत्कृष्ट अंतर कहेंगे एक जीव की अपेक्षा। हाँ, छठे में सातवां छठे में आया, वो भी ले सकते उसको। जघन्य काल तो उसमें पांचवे में घटित नहीं होगा। इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण जघन्य अंतर उसको उत्कृष्ट नहीं कह सकते। हाँ भाई, हाँ। अब एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल यहाँ बता रहे। उक्कस से न तेतीसम सागरो वमाणी सादिरे यानी, किसका अंतर देख रहे? एक जीव की अपेक्षा छठा सातवां गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अंतर, काले ने अंतर की बात यहाँ चले, अंतर वाला काल। तो उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक तेतीस सागरोपम है। जैसे कोई एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कषाय हो करके फिर भी, यानी अभी नीचे उतरेगा, सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और अप्रमत्त संयत हुआ तथा गुणस्थान का काल क्षय हो जाने से मरण को प्राप्त हो, एक समय कम तेतीस सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। हमें मतिशुद्ध अवधि तो कायम रखना है, और इसलिए तेतीस सागरोपम देवों में उत्पन्न के होने के लिए वो द्वितीय सोम वाला जो श्रेणी चढ़कर अभी अभी आया है नीचे, सातवें में आया, गुणस्थान समाप्त हुआ और होते ही मरा, तो चौथे में गया, फिर मतिशुद्ध अवधि तो चालू ही रहा उसका, परंतु सातवें का अंतर शुरू होगा। कोई सातवें से जाएगा, कोई छठे में आकर जाएगा, तो छठे का या सातवें का अंतर सिद्ध होगा। तो वहां की जो तैतीस सागर आयु है वो मतिशुद्ध अवधि के साथ रहा, एक समय कम, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अधिक से अधिक लंबे काल के बाद उसको संयम को प्राप्त कराना है। पूरे ही तैतीस सागर अगर आयु बांध वहां की आयु होगी उसके, तो वहां से लौट कर वो संयम धारण करने वाले जल्दी संयम धारण करते। यह हमको अंतर अधिक से अधिक लंबा ना है, उसकी अपेक्षा एक समय कम वाला आयु वाला जीव लिया। देखो, मरण को प्राप्त होकर एक समय कम तेतीस सागरोपम के आयु स्थिति वाले देव में उत्पन्न हुआ, पश्चात वहां से च्युत हो पूर्व कोटि के आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, उसका मतिश्रुता अवधि चल ही रहा है, और जीवन के अंतर्मूर्त प्रमाण अवशिष्ट रहने पर प्रमत्त संयत हुआ, यानी प्रमत्त संयत से गया था देवों में चौथे में जाकर, यानी उसका अंतर चालू हो गया था। अब वापस तैतीस सागर के बाद, यानी एक समय कम उसमें, फिर लौटकर अभी मनुष्य में आया, पूर्व कोटि में अधिक से अधिक काल बिताकर लास्ट एक अंतर्मूर्त बाकी रहा, तब फिर प्रमत्त संयत हुआ। तो बीच में मिथ्या तो में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। मतिशुद्धता अवधि अपना क्राइटेरिया, वो तो चलना चाहिए। हाँ, पहले सातवें में ही जाएगा, तो हमने सातवें का अंतर देखा, तो सातवें का अंतर वहां समाप्त होगा। अब छठे का अंतर देखना है, तो वो सातवें से छठे में आएगा, तो छठे का अंतर समाप्त हो जाएगा। प्रमत्त संयत हुआ, इनमें ऊपर के छह अंतर्मूर्त और मिलाए, यानी वो अभी तो निर्वाण को ही प्राप्त होने वाला है, तो वो उसके क्षपक श्रेणी के और संयोग अयोग के, ऐसे ही चार अंतर्मूर्त और मिलाए। अंतर के भीतर ही नव अंतर्मूर्तों में से बाहरी आठ अंतर्मूर्तों के घटा देने पर एक अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहता है, ऐसे एक अंतर्मूर्त से अधिक पूर्व कोटि से साधिक तेतीस सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। अब ये भीतरी अंतर और बाहरी, भीतरी अंतर्मूर्त और बाहरी अंतर्मूर्त क्या है? हमने अभी पढ़ा ना लास्ट सेंटेंस देखो, अंतर के भीतरी नव अंतर्मूर्त। हाँ, ये कहाँ के नव गिनने बोलो। हाँ, पहले नव क्यों गिनना उसको, वो अंतर में है ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहाँ अंतर शुरू हुआ? हाँ, ये नव क्यों घटाना? पीछे वाले आठ घटाना। हाँ, ये नौ तो अंतर वाले है। आप क्या कहते हैं अरविंद भाई, और आपके क्या पड़ोसी क्या कहते हैं? नहीं, देखो छठे का अंतर अभी हम देख रहे हैं, छठे का अंतर पहले देखेंगे। छठे से सातवें में गया अंतर शुरू होगा, पूरा उपशम श्रेणी लौटकर फिर सातवें तक आया है, छठे में नहीं आया है। छठे में आकर मरे नहीं है, सातवें में मरण हुआ है। यानी यहाँ पर जो अंतर शुरू हुआ था छठे के बाद, सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां, फिर दसवां नौवां आठवां सातवां, और उसके पश्चात मरकर देव हुआ। वहाँ 33 सागर में एक समय कम इतनी आयु बिताई, वहाँ पूर्व कोटि वाला मनुष्य में जन्मा। मैक्सिमम टाइम तक यानी आयु के अंतिम अंतर्मूर्त बाकी रखकर वहाँ तक तो संयम नहीं मिल प्राप्त किया था, तो वहाँ जाकर संयम ही हुआ। तो संयम ही हुआ तो पहले में भी सातवें में गया और फिर वापस छठे में आया, तब उसका अंतर समाप्त हुआ। फिर उसके बाद छठा सातवां किया, वो आगे की बातें सभी। तो ये तो नौ यहाँ से, ये तो अंतर वाले नौ है, ये जो अंतर्मूर्त गिना है ये क्यों गिना है फिर यहाँ पर? यहाँ पर गिनाने की जरूरत क्या है, यहाँ तो अंतर कह देते। क्योंकि इनको कहाँ मरण है वो बताना था। हो सकता है यहाँ भी मरकर देव में उत्पन्न हो सकता था, यहाँ मरकर भी देव में उत्पन्न होता तो ये नौ अंतर्मूर्त अंतर में से कम हो जाते। हमको मैक्सिमम अंतर चाहिए, तो ये इतने नौ अंतर्मूर्त भी यहाँ उसने यही मनुष्य भव में बिताए, छठे के बाद वाले अंतर के ही, अंतर के अंदर वाले ही है ये, भीतरी कहा उसको, और फिर देवों में उत्पन्न हुआ और फिर यहाँ। हाँ, ख्याल है, इसलिए हमको मैक्सिमम अंतर प्राप्त हुआ। तो ये तो अंतर के अंदर वाले ही अंतर्मूर्त है। अभी ये नव अंतर्मूर्त यहाँ हमने गिनाए हैं, ये तो अंतर वाले ही है, उसके भीतरी ही अंतर्मूर्त है। अब बाहर हमको कितना कम करना है वो देखेंगे ना। हमेशा हम क्या कहते हैं, छठे के पहले कितना अंतर वो माइनस करते हैं, तो ऐसा तो करना नहीं है। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखिए इसको फिर पढ़ेंगे। अंतर के भीतरी नव अंतर्मूर्तों से बाहरी आठ अंतर्मूर्तों के घटा देने पर एक अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहता है। फिर ऐसे एक अंतर्मूर्त से अधिक पूर्व कोटि से साधिक, आप नहीं समझ रहे, देखो ये कंफ्यूजन चल रहा है ना आपका। ये छठे के बाद यहाँ नव अंतर्मूर्त बीता है, ये पहले वाले मनुष्य भव के थे, बराबर। अभी सुनो, पहले बीच में वो 33 सागर की आयु वाला हुआ और उसके बाद वापस पूर्व कोटि वाला आयु है। पूर्व कोटि के आयु के पश्चात वाले आठ अंतर्मूर्त तो घटाना है हमको, जिस भव में उसको मोक्ष जाना है उसके अंतर आठ अंतर्मूर्त है, यानी यहाँ क्या हुआ, 33 सागर प्लस पूर्व कोटि में से 8 अंतर्मुहूर्त माइनस करो, बराबर। परंतु ये पहली वाली जो आयु है उसके 9 अंतर्मुहूर्त तो मिला दो, अकेले 33 सागर और पूर्व कोटि कहते तो ये रह जाता है अंतर छठे के बाद वाला।
ये शपथ के साथ अंतर्मुहूर्त
वो आगे वाले अंतर्मुहूर्त वो 8 है, पूर्व कोटि में से 8 अंतर्मुहूर्त माइनस करने के बदले 8 माइनस करो और एक मिला दो, हाँ तो एक अंतर्मुहूर्त हो जाएगा ना। यानी 33 सागर, एक समय कम वाला 33 सागर प्लस ये अंतर्मुहूर्त, ऐसे एक अंतर्मुहूर्त से अधिक हमेशा हम ऊन करते माइनस करते। ये पूर्व अगर यहाँ छठे में से सातवें में जाते ही मरते तो कैसे हम लेंगे, 33 सागर और पूर्व कोटि नहीं, उसमें से माइनस करो 8, ये यदि 9 अगर नहीं होते तो की बात मैं कह रही हूँ। हमने यहाँ 9 पहले 9 अंतर्मुहूर्त पूर्व वाले मनुष्य भव में बिताए थे, उसको भी काउंट करना है ना अंतर में, तो अंतर कितना है टोटल 9 अंतर्मुहूर्त प्लस 33 सागर, अभी एक समय कम उसको समझे, 33 सागर प्लस पूर्व कोटि में से 8 अंतर्मुहूर्त माइनस करो, पहले हमने 9 ऐड किए थे अभी 8 माइनस किए, इसका अर्थ एक मिलाया हमने, उत्कृष्ट अंतर होता है। अगले पृष्ठ पर 121 पृष्ठ पर आए हम। इस प्रकार यह अंतर के विशेष को नहीं जोड़ करके कहा है, अंतर के विशेष को नहीं जोड़ करके ने? अंतर का विशेष यानी ये जो 9 अंतर्मुहूर्त है और वो वाले जो 8 अंतर्मुहूर्त है उनका तो प्रमाण अलग अलग होगा। यहाँ के कौन से अंतर्मुहूर्त लिए, छठे, हाँ इन्हें सातवें वाला, फिर आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारह करके हम फिर वापस लौटे थे, ये अंतर्मुहूर्त। और पश्चात वाले जो 8 अंतर्मुहूर्त है वो तो क्षपक श्रेणी के है अंतर्मुहूर्त, हाँ वो लास्ट वाले अंतर्मुहूर्त, उनका काल अलग अलग होगा तो उसको नहीं, उसको गौण करेंगे, इसलिए 9 अंतर्मुहूर्त माइनस 8 अंतर्मुहूर्त कह दिया, विशेष को गौण कर दिया, फिर भी 9 में से 8 माइनस कर दिए। यहां का काल और वहां का काल सरीखा नहीं होगा, उपशम श्रेणी के जो अंतर्मुहूर्त गिने हैं और क्षपक श्रेणी और सहयोगी अयोगी के जो अभी हमने अंतर्मुहूर्त गिने हैं वो समान नहीं है। जहां विशुद्धि ज्यादा होती है वहां काल कम होता है गुणस्थान का, तो अभी हम देखेंगे यहां उसकी बात। नहीं वो तो समान ही है दोनों में, 33 सागर माइनस एक समय वो तो गिना ही हमने, और पूर्व कोटि में से 8 अंतर्मुहूर्त माइनस करने ही थे, परंतु ये हमने 9 में से 8 जो माइनस करके एक अंतर्मुहूर्त कह दिया है, वो जो माइनस करने के लिए तो हमने 9 माइनस 8 किया, परंतु 9 का जो काल है और 8 का काल है वो अलग अलग है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त अलग बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने उपशम श्रेणी वाले अंतर्मुहूर्त गिने हैं और वहां क्षपक श्रेणी वाले अंतर्मुहूर्त है, क्या लगता है, अभी और बताएंगे आगे। नहीं वो तो समझ लेना, अभी हम 33 सागरों में वो एक समय कम नहीं, वो एक बार बता दिया इसलिए बार बार तो उसी को रिपीट नहीं करेंगे, वो तो 33 सागरों को हम ऐसा कहेंगे। ये विशेष नहीं जोड़ करके ने अंतर्मुहूर्त का प्रमाण अलग अलग है ना, उसकी बात नहीं करके। अंतर्मुहूर्त का प्रमाण अलग है। अभी विशेष के जोड़े जाने पर अभी उसके हम अगर बात देखेंगे कौन सा अंतर्मुहूर्त कितना बड़ा है छोटा है उसकी अगर बात करेंगे तो अंतर के आभ्यंतर से अप्रमत्त संयत का दो काल अभी हम इसको गिनेंगे। छठे, ये पहले नौ अंतर्मूर्त थे, उसमें हमने क्या सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, फिर दसवां, फिर नौवां, आठवां और सातवां, और यहाँ जाके मरण हुआ था। पूर्व भव के ये नौ अंतर्मूर्त, तो इसमें ये अभ्यंतर के अंतर्मूर्तों की, नौ अंतर्मूर्तों की बात चल रही है। उसमें अप्रमत्त संयत का दो काल, ये सातवां और ये सातवां, अप्रमत्त संयत के दो काल है, चढ़ते हुए और उतरते हुए, क्योंकि छठे का हम अंतर गिन रहे ना, छठे के बाद वो सातवें में गया, फिर आठवें में, फिर नौवें में, फिर दसवें में, ग्यारह तो एक ही बार होगा, और फिर दसवां, नौवां, आठवां, सातवां, यानी सात को हम दो बार लेंगे, बराबर। उनमें से एक गुणस्थान के काल से दुगुणा सदृश काल निकाल देना चाहिए। नहीं, बीच में कुछ रह गया, एक मिनट, फिर मैं पढ़ती हूँ सेकंड लाइन। विशेष को जोड़े जाने पर अंतर के आभ्यंतर से अप्रमत्त संयत का दो काल और उनके अंतर का बाहरी एक क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत का काल होता है, बाहरी एक। अब ये आगे वाले जो आठ अंतर्मूर्त है उसमें एक सातवें का है, आठवें का एक, नौवें का एक, ऐसा दसवें का एक, बारहवें का एक, तेरहवें का एक, चौदहवें का एक, आगे वाले आठ मंदिर। अब यहाँ फिर पढ़ते देखो कि अभ्यंतर से, सेकंड लाइन ना, अभ्यंतर से अप्रमत्त संयत का दो काल और उनके अंतर का बाहरी यानी लास्ट वाला एक शपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत का काल होता है। उनमें से एक गुणस्थान के काल से दुगुणा सदृश काल निकाल देना चाहिए। ये फिर सब पढ़ेंगे, फिर दोबारा देखेंगे इसको। पुनः अंतर के आभ्यंतर छह उपशामक काल होते हैं। अच्छा, वो उपशामक का अलग लिया। अंतर के अभ्यंतर छह उपशामक काल होते हैं, उनके बाहरी अवशिष्ट सात अंतर्मूर्तों से तीन क्षपक गुणस्थानों वाले क्षपक काल निकाल देना चाहिए। अच्छा, इन्होंने तो समान ही अंतर देखा, ऐसा कह गया। अच्छा, यानी यहाँ दो काल है और यहाँ एक काल है। अभी उसमें क्या काल में कितना डिफरेंस है वो नहीं, यहाँ दो बार सातवां है और यहाँ एक बार सातवां है, यहाँ दो बार आठवां है, यहाँ एक बार आठवां है, यहाँ दो बार नौवां है, यहाँ एक बार नौवां है, यहाँ दो बार दसवां है, यहाँ एक बार दसवां है। इसलिए क्या कहते हैं, सातवें की बात की, आठ नौ और दस, और आठ नौ और दस, ये छः उपशामक हो गए, तो ये छः हो गए और वहाँ तीन हो गए, तो क्या कहते हैं देखो, अंतर के अभ्यंतर छह उपशामक काल होते हैं, उनके बाहरी सात अंतर में तीन क्षपक गुणस्थान वालों के क्षपक काल निकाल देना चाहिए। यानी यहाँ के जो आठ नौ और दस दो बार और वहां एक बार, उसमें से एक बार का निकाल देना। एक उपशांत काल में से एक क्षपक काल का आधा भाग घटा देने पर, अभी ये ग्यारहवें का जो काल है उसमें से बारहवां काल घटा देना। तो अभी क्या कहा, बारहवें का काल आधा है, तो आधा घटा देने पर आधा रहेगा, यानी ये तीन दुनी डबल थे ना, ये छह में से ये तीन निकाल दिए, तीन रह गए, ग्यारहवें में से बारहवां निकाल दिया, आधा रह गया, ये साढ़े तीन रह गए। ये दोबारा फिर पढ़ेंगे सब, देखो निकाल देना। पूरे ही आठ निकालना था, तो नौ में से आठ निकालने थे, ये तो जनरल सामान्य कथन हो गया। अब विशेष कथन करना है, तो यहाँ सातवें को दो बार है, छठे में छठा है ना, यहाँ छठे में आते ही अंतर समाप्त हुआ है। अंतर समाप्त हुआ था, उसके बाहर वाला जो है उसकी बात चल रही है, वहां छठा और सातवां दोनों लिया था। तो ये तीन के तीन में से वो तीन गए, ये छह थे ना, आठवां नौवां दसवां, आठवां नौवां दसवां छह हो गए, उसमें से उसके आठवां नौवां दसवां निकल गए, तीन रह गए। ग्यारहवें का काल डबल है, बारहवें का उससे आधा है, ग्यारहवें के काल में से बारहवें का काल निकाल दिया तो आधा रह गया, तो साढ़े तीन रह गए। तो अवशिष्ट साढ़े तीन अंतर्मूर्तों से कम, पूर्व कोटि से साधिक, 33 सागरोपम काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। वहां तो हमने एक अंतर्मूर्त अधिक बताया था, परंतु यदि काल की गणना करेंगे तो साढ़े तीन से कम, लिखा ना, साढ़े तीन अंतर्मूर्तों से कम, पूर्व कोटि से साधिक। आठ नौ दस,
आठ नौ दस निकाला और वहाँ का आठ नौ दस निकाला, बराबर है। तो भी ये एक बार का वो आठ नौ दस का बाकी रहता है, जो
वही तो गिना ना,
तो पीछे वो बारह वा तेरह
उसे तो साधिक किया था हमने, पहले नौ साधिक थे, नौ ऐड करना था हमको और आठ घटाने थे, नौ ऐड करने थे और आठ घटाने थे। वो हमने छह में गिना, छह अंतर्मूर्त यहाँ के और तीन अंतर्मूर्त वहां के, ऐसा लिया था। छह में से तीन घटाए, तीन रह गए यहाँ, ग्यारहवें में से बारहवां घटाया तो एक को एक नहीं कैंसिल किया, आधा रखा, इस तरह हिसाब किया उसका। पहले तो हमने नौ में से आठ घटा दिए थे डायरेक्ट, उसके बदले अभी साढ़े तीन रखे यहाँ। इसको फिर पढ़ती हूँ मैं, पहले लाइन से। इस प्रकार से यह अंतर के विशेष को नहीं जोड़ करके कहा है, ये सामान्य कथन है। नौ अंतर्मूर्तों से हमने आठ माइनस किए और वो एक साधिक कर दिया, एक अंतर्मूर्त मिला ना, है ना। देखो, जिस भव में निर्वाण हुआ उस भव के तो नौ अंतर्मूर्त घटाने हैं पूर्व कोटि में से, और पहले जो संयत हुआ था छठे के बाद सातवें में गया तब अंतर शुरू हुआ था। पूर्व वाले मनुष्य भव के अंतिम नौ अंतर्मूर्त ऐड करना है और यहाँ वाले घटाना है, तो एक अंतर्मूर्त वहां बढ़ गया था, बाद में बीच में देवकी आई और यहाँ पूर्व कोटि की हो गई, यानी इतना बड़ा अंतर हुआ था। अब कहते उसकी विशेषता जो है उन अंतरों की, उसको देखेंगे मिला करके कि वहां के अंतर्मूर्त बड़े, इसलिए वो फिर उसमें ये और अधिक बताया। तो क्या कहते, देखो, विशेष के जोड़े जाने पर उनमें से क्या क्या विशेषता है वो देखने पर, अंतर के आभ्यंतर से यानी भीतरी अप्रमत्त संयत का दो काल, एक छठे के छोड़ने के बाद और उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने के बाद मरने के पहले वाला, ये दो सातवें गुणस्थान के दो काल, और उनके अंतर का बाहरी, ये तो भीतरी सातवां गुणस्थान हुआ, बाहरी यानी अंतिम वाला, हाँ शपक श्रेणी चढ़ने के पहले वाला, बाहरी एक शपक के योग्य अप्रमत्त संयत का काल होता है। बाहरी यानी जब संयम प्राप्त किया था तो सातवें में आया, फिर छठा सातवां चलेगा, फिर सातवें में आकर फिर ऊपर चढ़ेगा। उनमें से एक गुणस्थान के काल के काल से दुगुणा सदृश काल निकाल देना चाहिए। पुनः अंतर के आभ्यंतर छह उपशामक काल होते हैं, यानी यहाँ दो बार सात है और वहां वो छठा सातवां भी किया और फिर उपशम श्रेणी के योग्य भी किया, इसलिए उसको घटा देना। पुनः अंतर के अभ्यंतर यानी भीतरी छह उपशामक काल होते हैं, आठवां नौवां और दसवें के दो बार, ये छह उपशामक काल हुए। और बाहरी अवशिष्ट सात अंतर मुहूर्तों में से पहले आठ में से तो एक सातवें को तो घटा दिया था, अब जो सात अंतर मुहूर्त बाकी रहे थे उसमें से क्षपक गुण स्थान कितने हैं, तीन, आठवां नौवां और दसवां, तीन क्षपक गुण स्थानों वाले क्षपक काल निकाल देना चाहिए। यहाँ के छह में से वो तीन निकाल दिए तो तीन रहेगी यहाँ पर। अब उपशांत काल जो है, उपशांत काल में से एक क्षपक काल का आधा भाग घटा देने पर, आधा ही घटा दिया, क्षपक काल का आधा घटा देने पर अवशिष्ट साढ़े तीन अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक, साढ़े तीन अंतर मुहूर्त कम करना, वहां 33 सागरोपम काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। यानी वहां वाला लास्ट वाले अंतर मुहूर्त बढ़ा दिए उन्होंने, वो बड़े है क्या, साढ़े तीन अंतर मुहूर्त घटा दिए, साढ़े तीन अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक, यानी पहले नौ अंतर मुहूर्तों से पीछे के आठ अंतर मुहूर्त बड़े हो गए, घटाने वाली संख्या ज्यादा हो गई। पहले हमने एक अंतर मुहूर्त साधिक लिखा था ना, एक अंतर मुहूर्त अवशिष्ट रहता है, एक अंतर मुहूर्त से अधिक पूर्व कोटि से साधिक, और यहाँ साढ़े तीन अंतर मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक। इसका अर्थ क्या हुआ, ये नौ अंतर मुहूर्तों से आठ अंतर मुहूर्त घटा देने पर माइनस साढ़े तीन रह गए। आठ अंतर मुहूर्तों का काल बड़ा है साढ़े तीन अंतर मुहूर्तों से, साढ़े तीन अंतर मुहूर्त वहां आठ की ओर से जो माइनस करना है ऋण राशि है उसमें साढ़े तीन अंतर मुहूर्त यानी माइनस फिगर रह जाती है। पहले हमने नौ में से आठ घटा दिए थे तो एक प्लस रहा। अब मान लेते हैं नौ माइनस साढ़े ग्यारह माइनस साढ़े तीन, साढ़े अकड़ आठ, आठ में से साढ़े तीन और साढ़े बारह करना चाहिए तो साढ़े तीन माइनस हो गए ना, फिर वैसे यहाँ समझा रहे हैं। ये वहां का काल दुगुना ले रहे हैं, उल्टा हो गया क्या। यानी इनका कहना ये दो ऊपर का और नीचे का सातवां और सातवां और वहां का एक सातवां ये सदृश है, ऐसा कुछ है। अभी अल्प बहुत्व में उसका काल जब आएगा तब इसकी क्लैरिटी ज्यादा हो जाए। उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी का जो अल्प बहुत्व आएगा तब देखना चाहिए, तब जाके इसकी क्लैरिटी और होगी। ये कैसे उन्होंने साढ़े तीन निकाले ये ख्याल में आया ना, उपशम श्रेणी के गुणस्थान और क्षपक श्रेणी के गुणस्थान इनके कंपेरिजन की, यहाँ दो दो बार है वहाँ एक बार है, फिर भी वहाँ के अंतर्मूर्त जो आठ है और यहाँ के जो नौ अंतर्मूर्तों की टोटल है वहाँ साढ़े तीन अंतर्मूर्त ज्यादा है माइनस साइड में। अब मति शुत ज्ञान वाले अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर चाहिए, बीच में शब्द उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक अप्रमत्त संयत संयत करो, संयत हुआ, संयत अपूर्वकरण। अभी सातवें का अंतर चालू है, सातवें वाला आठवें में गया, अब कहाँ मरेगा? हाँ, आठवें का काल समाप्त तो होते ही मरेगा। सातवें में लाते तो अंतर वहीं खलास हो जाता है, सातवें में नहीं लाना है। आठवें का काल समाप्त तो होते ही मरकर देव में चला जाएगा, हमको सातवें का अंतर देखना है। देव में जाएगा, वहां की इतनी उत्कृष्ट आयु भोगेगा, फिर मनुष्य में आएगा पूर्व कोटि वाले, और अंत में जाकर फिर संयम को प्राप्त करेगा, तब उसका सातवें का अंतर समाप्त होगा। तो एक अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय होकर के फिर भी सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण होकर, अपूर्वकरण में भी पूरा अपूर्वकरण का काल बिताएगा यहीं पर मनुष्य में, और फिर अंत में मरेगा, मरण को प्राप्त हुआ, और एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। ये एक समय की बात हमने बहुत बार देखी थी। वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर अप्रमत्त संयत हुआ, यानी जब दोबारा अप्रमत्त संयत हुआ तब उनका अंतर समाप्त हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पश्चात प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें क्षपक श्रेणी संबंधी ऊपर के 6 अंतर्मूर्त मिलाए, यानी वहां फिर प्रमत्त अप्रमत्त ऐसे वाले और अंतर्मूर्त ले लिए। अंतर के आभ्यंतर उपशामक संबंधी 6 काल होते हैं, उनके अंतर से बाहरी 3 क्षपक काल कम कर देना चाहिए। अंदर के अभी सातवें का अंतर देख रहे हैं, आठवां, नौवां और दसवां, दो बार ये 6 यहाँ है और बाहर के 3 हैं। अंतर के अभ्यंतर वाले उपशांत काल में से अंतर के बाहरी क्षपक काल का आधा काल निकालना चाहिए। डबल होता है, मैंने पहले उल्टा किया क्योंकि उसका आधा निकालना है। हाँ, यानी 11वें का काल से 12वें का काल डबल हो गया, इसलिए डबल। मैंने उल्टा बताया था। यहाँ का डबल, उससे डबल हो गया ना वहां का काल, तो ये दोनों मिलकर उसके 1 के सदृश हो गए। ये 6 उसके 3 के बराबर हुए और 11 12वें के आधे के प्रमाण हुआ, तो 3.5 बाकी रह गए। वही मैं सोच रही थी, कुछ घोटाला मेरा हो रहा था, अच्छा किया आपने बता दिया। बराबर, अवशिष्ट बचे हुए 5.5 अंतर्मूर्तों में से 8वें 9वें 10वें और वहां के 3 निकाल दिए, उसके साथ वो के 3 निकाले, फिर यहाँ के 11वें के साथ 12वां का आधा निकाल दिया। अब बचे हुए 5.5 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर होता है। सदृश पक्ष में अंतर के भीतरी 7 अंतर्मूर्तों को अंतर के बाहरी 9 अंतर्मूर्तों से घटा देने पर अवशेष 2 अंतर्मूर्त रहते हैं। जनरल बात है, इनसे कम पूर्व कोटि से साधित 33 सागरोपम प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। पहले तो हमने अंदर के 7 देखे थे ना अंतर्मूर्त, और बाहर के 6-3-9 देखे थे, सदृश पक्ष जब कहा था तुमने, यानी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त ऐसा, तो अंतर के तो 7 थे और बाहरी वाले 9 थे, तो 2 अंतर्मूर्तों से कम कहा था वहां, इसी प्रकार से अवधि ज्ञानी का भी अंतर कहना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं है। अब अगला सूत्र हम देखेंगे 241। चतुर्णम उवसामगाणम अंतरम केवचिरम कालादोहोदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्येन एक समयम। तीनों ज्ञान वाले चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। अब ये ज्ञान वाले उपशम श्रेणी वाले कहो तो एक ही बात है ना, या अकेला उपशम श्रेणी कहो, कथन तो वैसा ही होगा, यानी जघन्य अंतर नाना जीवों की अपेक्षा एक समय होगा। यह सूत्र सुगम है। उक्त जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा ऊपर करेगी उक्कस्य न वासपुदत्तम। उक्त जीवों का यानी तीन ज्ञान वाले हो चारों उपशामकों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। यह सूत्र भी सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा अंतर कहेंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतोमोत्तम। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यह सूत्र भी सुगम है। यह कैसा घटित होगा? अभी छठे का काल देखना है तो छठे से ऊपर गया और फिर उपशम श्रेणी चढ़कर फिर नीचे आ गया, या सातवें से ऊपर चढ़कर फिर आ गया उपशम से उपशम का, यानी आठवें की बात, छठे सातवें की यहाँ नहीं लेनी है, आठवें से ही लेनी है, आठवें से आठवें तक का काल। बीच में हमने जो वेद वाली बात की थी तो उसको नहीं पकड़ा था, क्योंकि वहां वेद से अवेद वाला हो जाता था, अब ज्ञान तो वही रहता है, इसलिए पूरा श्रेणी चढ़कर उतरने वाला जघन्य अंतर्मूर्त लेना। वहां नौवे के पश्चात मार्गणा बदल जाती थी, वेद वाली मार्गणा अवेद हो जाती थी, तो इसलिए वहां नहीं लिया था। तो यह सूत्र भी सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर बताएंगे। उक्कस से न छावट्टी सागरोमाणी सादी रेयाणी। क्या हुआ? एदपि सुगमम। हाँ, एदपि सुगमम करो उसको। और वो भी पहले पृष्ठ पर प्राकृत में जो है लास्ट लाइन जो है 121 पृष्ठ पर अंतिम लाइन उवसामगद्धाव अथि तासिम अंतर करवो अतरम हुआ है सुगमम। ये वो एद के ऊपर बिंदी, द के ऊपर बिंदी देना, नीचे वाला, नीचे से दूसरी लाइन एदम करना उसको। और अभी मैं 121 पृष्ठ पर बता रही हूँ, वहां की प्राकृत के अंतर, वही पृष्ठ लेफ्ट साइड में 121 वाला प्राकृत की अंतिम लाइन वसाम गद्धा अथि तासिम अंतरम करना उसको। अंतरम भी नहीं, अंतर बाहिर लिलाऊ, अंतर करना उसको अंतरम। एक मिनट, लद्दम अंतरम, अंतर अपर रखना है, अंतर बाहिर लिल्लाओ, ये शब्द आया क्या पहले? अंतर बाहिर लिल्लाओ, अंतर अतर, ये दूसरे लाइन में भी अतर हुआ है, अंतर बाहिरिया, वो र के ऊपर नहीं चाहिए बिंदी, अंतर करना इसको भी। ठीक है, ये क्या है, करेक्शन थोड़ा भेजेंगे ना इनको करके। अब हम 244 सूत्र पढ़ेंगे। उक्कसेन छावट्टी सागरोमानी सादेरिया ने पढ़ा था, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागरोपम है। वो तीन ज्ञान कायम रहने चाहिए और फिर उसमें ये जो कुछ उत्कृष्ट अंतर है, किसकी बात चल रही है? हाँ हाँ, उसमें उपशम श्रेणी वाले, जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर वेदक सम्यक्त्व और अप्रमत्त गुणस्थान को एक साथ प्राप्त हुआ, पश्चात प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके, ये सब सहस्रों परिवर्तन भी एक अंतर्मूर्त में हो जाते हैं, इतने करके उपशम श्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध होता हुआ, यानी श्रेणी के योग्य जो सातिशय अप्रमत्त हुआ, वो श्रेणी चढ़ने के पहले जो अधकरण होता है ना वहाँ, तो विशुद्धि हुई, श्रेणी चढ़ सकता है अभी, फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय होकर, फिर भी सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण होकर तथा नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ। अभी अंतर इसका शुरू हुआ। कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण संयम को परिपालन कर मरा। अभी यहां उपशम श्रेणी में से आते ही मरण को नहीं प्राप्त हुआ है, उपशम श्रेणी का अंतर तो चालू हो गया, अब ये पूर्व कोटि वाली रिमेनिंग आयु है वो संयम के साथ बिताई है। गिरा ने गिरकर मिथ्यात्व में भी नहीं भेजा उनको, क्योंकि देव की उत्कृष्ट आयु भी लेनी है ना बीच बीच में, अंतर को प्राप्त। कुछ कम पूर्व कोटि काल प्रमाण संयम को परिपालन कर मरा और 33 सागरोपम आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, पश्चात च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और क्षायिक सम्यक्त्व को धारण कर और संयम धारण करके मरण को प्राप्त हो 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, यानी 33-33 के बीच में एक पूर्व कोटि का मनुष्य भोग किया है उसने, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि आयु वाला मनुष्य हुआ और यथा समय संयम को प्राप्त हुआ। पुनः संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रह जाने पर अपूर्वकरण गुणस्थान, वो स्व निकाल देना बीच वाला, अपूर्वकरण गुणस्थान वर्ती हुआ, जब अपूर्वकरण गुणस्थान में आए तब अंतर समाप्त हुआ, उपशम श्रेणी मांडी अभी और नीचे आकर फिर क्षपक श्रेणी मांडेगा, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पश्चात अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत कषाय होकर पुनः सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण अप्रमत्त संयत और प्रमत्त संयत हुआ, पुनः अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें ऊपर के क्षपक श्रेणी संबंधी और भी 6 अंतर्मूर्त मिलाए, इस प्रकार 8 वर्ष और 26 अंतर्मूर्तों से कम 3 पूर्व कोटियों से साधिक 66 सागरोपम उत्कृष्ट अंतर होता है। पहले वाला पूर्व कोटि का एक, उसके स्टार्टिंग में वो उपशम श्रेणी मांडी थी उसने, फिर रिमेनिंग पूर्व कोटि संयम में बिताए, फिर देव का एक भव, फिर मनुष्य का पूर्व कोटि का, फिर देव का, फिर मनुष्य का पूर्व कोटि का, और उसके अंत में संयम को प्राप्त होकर उपशम श्रेणी चढ़ी, तो 3 पूर्व कोटिया और 233 सागर बीच में ले। अथवा अभी दूसरा भी कॉम्बिनेशन बता रहे, अथवा 13-22 और 31 सागरोपम आयु की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न कराकर मनुष्य भव संबंधी 4 पूर्व कोटियां कहना चाहिए, देव के 3 भव हो जाइए और मनुष्यों के, हाँ, पहले वाले और बीच वाले ऐसे सब मिलकर 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से शेष 3 उपशामकों का भी अंतर कहना चाहिए। ये तो 8वें से हमने गिना, शेष उपशामकों का अंतर कैसा कहेंगे? विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण के 24 अंतर्मूर्त, दो दो कम हो जाएगी, और उपशांत कषाय के 20 अंतर्मूर्त कम कहना चाहिए। यानी वहां आठवें का हमने गिना था, यहां नहीं गिनना है, वहां से गिनना चालू करेंगे। वो नौवें में से आठवें में गया तो अंतर चालू हो गया, फिर सातवें में आया, संयम के साथ पूरी पूर्व कोटि बिताई वगैरह वगैरह, आगे का कथन तो वैसा ही होगा। इनमें से वो कम करना है, नौवे की बात चल रही ना, इसलिए नौवे से आठवें में जाता है, जाते ही उनका अंतर चालू हो गया। इसी प्रकार से ये रह गया बीच में 24 अंतर्मूर्त अनिवृत्त, और उपशांत कषाय के 20 अंतर्मूर्त कम कहना चाहिए। सूक्ष्म संप्राय के नहीं लिखा है, ऊपर तो लिखा है 13-22। हाँ, कहाँ 13 लिखा है? अच्छा अच्छा, आपके पहले पृष्ठ पर जो लिखा है ना, अथवा 13 का है, 13 सागर, 20-22 सागर और 31 सागर, टोटल कितनी हुई? हाँ, ये अभी 66 में अलग अलग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप। बीच में मनुष्य भव है, पूर्व कोटि वाले लेंगे, वहां देव के 3 हो गए तो मनुष्य के भव 4 हो जाएंगे। पहले हमने देखा ना लांतों का पेश, उसका लांतों का 13 होता है वगैरह वगैरह, आगे के पहले हमने इसकी बात की थी, और 31 वाला वो गरीब एक वाला होगा। देखो ऊपर लिखा है पहली प्राकृत की लाइन, एवं चेव तिन्नम उवसामगाणम, तीनों ही उपसाम का ऐसा ही है। नवरी विशेषता क्या है? 24-22-20 अंतो मुहूर्ता ऊणा कादौवा। ये जो 22 की बात है उसका यहाँ से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि विशेष बात यह है कि, नवरी का अर्थ है विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण के 24 अंतर्मूर्त ये 24 हो गए, और सूक्ष्म सांप्राय के 20 ऐसा पूरा एक वाक्य वहां लिखो। 22 देखो, अनिवृत्तिकरण के 24 अंतर्मूर्त, उसके बाद डालना सूक्ष्म सांप्राय के 22 अंतर्मूर्त, सूक्ष्म सांप्राय के 22 अंतर्मूर्त, और शब्द है वहां पर, और उपशांत कषाय के 20 अंतर्मूर्त कम कहना चाहिए। यहाँ 26 है, उसमें वो चढ़ने उतरने का एक एक अंतर्मूर्त उसका कम करते जाओ। इसी प्रकार से उपशामक अवधि ज्ञानियों का भी अंतर कहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कोई विशेषता नहीं है। मति शुद्ध ज्ञानी कहो, उपशामक या अवधि ज्ञानी कहो, उसमें कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। अब आगे क्षपक की बात करेंगे। चधुन्नम खवगाणम ओघम नवरी विशेषो ओधिनाणीसु खवाणम वासु पुधत्तम, पुघत्त हुआ है, पुधत्त करो उसको, वास पुधत्तम। क्या कहते हैं? तीनों ज्ञान वाले चारों क्षपकों का अंतर ओघ के समान है। विशेष बात यह है कि अवधि ज्ञानियों में क्षपकों का अंतर वर्ष पृथक्त्व है। अब तीन ज्ञान में मति श्रुत ज्ञान में कितना है अंतर? हाँ, शपकों की बात चल रही, जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 6 महीने नाना जीवों की अपेक्षा। अब अवधि ज्ञानियों की अकेले की बात करेंगे तो वर्ष पृथक्त्व अधिक से अधिक उत्कृष्ट अंतर बताया। यानी सभी जो शपक श्रेणी चढ़ने वाले वो अवधि ज्ञानी नहीं होंगे, उसमें इतना अंतर पड़ सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञानियों के प्राय होने का अभाव है। प्राय ने हमेशा ही यानी जनरली प्राय है। अब मन पर ज्ञानियों की बात करेंगे। मनपज्जवनानीसु, अच्छा हमेशा होने का अभाव, बराबर है, यानी हरेक जीव को वो होगा ही नहीं, निरंतर ऐसा नहीं ले सकते हैं। बहुतांश ऐसा हम कहते ना, बहुत करके उसका अभाव है। तो मनपज्जवनानीसु पमत्त अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्यंतरम निरंतरम। मनपर्य ज्ञानियों में प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, यानी हमेशा ही मनपर्य ज्ञानी होगे ही, उनका कभी अभाव है ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे हम छठा सातवां गुणस्थान निरंतर देखते हैं नाना जीवों की अपेक्षा, वैसे मनपर्य ज्ञानी छठे सातवें वाले भी होंगे। अब यहाँ मनपर्य ज्ञानी गुणस्थान की अभी यहाँ चर्चा नहीं है, मनपर्य ज्ञानी भी हमेशा ही होंगे, छठे सातवें की बात है, क्योंकि क्षपकों की बात तो करेंगे ना, उसमें तो नाना जीवों की अपेक्षा, तो उन गुणस्थानों में अंतर पड़ सकता है। छठा सातवां गुणस्थान और मनपर्य ज्ञानी ऐसे होंगे ही हमेशा, जैसे मतिशुद्ध ज्ञानी भी हमेशा तो सभी है ही है, अवधि ज्ञानी भी कितने ही होंगे, वैसे मनपर्य ज्ञानी भी कितने ही होंगे। नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं, निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा, एक जीवम पड़ुच्च झन्नेन अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंत, जघन्य अंतर, अंतर्मूर्त है। मनपर्य ज्ञान तो कायम रहेगा, परंतु गुणस्थान में अंतर पड़ेगा, वो जघन्य अंतर। यह सूत्र भी सुगम है। अब उत्कृष्ट, उक्कस्येन अंतोमोत्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर, अंतर्मूर्त है, यानी मनपर्य ज्ञान चलता रहे और गुणस्थानों में अंतर पड़े, वो भी अंतर्मूर्त ही होगा, अन्य गुणस्थान में जाकर वापस उस गुणस्थान में आए, क्योंकि वैसे वहां हमने मतिश्रुत अवधि की बात की थी, वहां तो भले वो संयम से च्युत हो गया और ऊपर चला गया देवों में, तो भी उसका वो मतिश्रुत अवधि चालू रहा। मनपर्य के लिए क्या कंडीशन है, वो तो मुनि संयमियों को होता है, कौन से गुणस्थान से कहाँ तक, हाँ छठे से बारह तक। हाँ अब यहाँ समझा रहे, जैसे एक मनपर्य ज्ञानी प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत हो ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर प्रमत्त संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। मनपर्य ज्ञानी अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं, प्रमत्त संयत का अंतर कितना, सातवें में गया, पूरी उपशम श्रेणी चढ़कर अकेले सातवें में के काल अकेले, अभी सातवें प्लस उपशम श्रेणी, फिर उतरते समय सातवां और फिर छठा, यानी दो बार सातवां और पूरी उपशम श्रेणी, ये छठे का अंतर हुआ उत्कृष्ट अंतर। और सातवें का अंतर कहते समय अभी देखो, मनपर्य ज्ञानी अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं, एक मनपर्य ज्ञानी अप्रमत्त संयत जीव प्रमत्त संयत को हो, प्रमत्त संयत होकर अंतर को प्राप्त हो, अति दीर्घ काल से अप्रमत्त संयत हो गया, ये दीर्घ अंतर बता रहे, क्या कहा दीर्घ काल के लिए कहाँ भेजा, छठे में, और लघु काल के लिए कहाँ भेजेंगे, उपशम श्रेणी में। इसका अर्थ ख्याल आता है, छठे का काल बड़ा है और सातवें से आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां फिर दसवां नौवां आठवां का काल कम है। तो शंका, मनपर्य ज्ञानी अप्रमत्त संयत को उपशम श्रेणी पर चढ़ाकर पुनः अंतर को प्राप्त क्यों नहीं कराया, उत्कृष्ट अंतर की बात चल रही थी ना, तो उपशम श्रेणी चढ़कर उतरने वाले को क्यों नहीं लिया, उसका समाधान नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी संबंधी सभी अर्थात चार चढ़ने के और तीन उतरने के, इन सब गुणस्थानों संबंधी कालों से अकेले प्रमत्त संयत का काल ही संख्यात गुणा होता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। पहले भी हमने इसको देखा था, कहाँ आया था, 14 नंबर निकालो, अप्रमत संयत का जघन्य अंतर वहां लिया था, एक अप्रमत संयत जो मिला, सेकंड पैराग्राफ 14 पृष्ठ पर सेकंड पैराग्राफ राइट साइड में है, अशोक भाई कहाँ देख रहे हैं, हाँ दूसरा पैराग्राफ, एक अप्रमत संयत जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर पुनः लौटा और अप्रमत संयत हो गया, इस प्रकार अंतर्मूर्त काल प्रमाण जघन्य अंतर हुआ। और अभी हम उत्कृष्ट अंतर देख रहे हैं एक जीव की अपेक्षा, तो उत्कृष्ट है वो छठे में आकर फिर ऊपर गया, ये पढ़ा था ना पहले हमने, वही तो अभी जो हमने पढ़ा है वही वहां बताया कि इन सभी गुणस्थानों की चोट काल की टोटल होगी और हाँ उससे छठे का काल संख्यात गुणा बढ़ा है। जघन्य अंतर में उपशम श्रेणी लिया, बराबर है, ये पहले बात आई है ना, ये हो गया अभी, अब उपशामकों की बात करेंगे। संख्यात गुणा होता है ऐसा गुरु का उपदेश है। अब 249 सूत्र, अभी उपशामकों की बात करेंगे। चदुनम उवसाम गाणम अंतरम केवचिरम कालाद होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्नेन एक समयम, कि मनपरिय ज्ञानी चारों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। अब उत्कृष्ट उक्कसेन वास पुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि ओग में भी हमने उपशम का काल वो वर्ष पृथक्त्व देखा था, उसका अंतर नाना जीवों की अपेक्षा। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमोत्तम, मनःपरे ज्ञानी चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर जघन्य से अंतर मूर्त है, यह सूत्र सुगम है। हाँ, अब अगला, उक्कसेन पूव कोड़ी देसुणम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। स्टार्टिंग में हाँ उपशम श्रेणी मांडी और फिर टुवर्ड्स एंड देखो यहाँ क्या कहते, जैसे कोई एक जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और अंतर्मूर्त से अधिक 8 वर्ष के द्वारा संयम को प्राप्त हुआ, पुनः प्रमत्त अप्रमत्त संयत गुणस्थान में साता और असाता प्रकृतियों के सहस्रों बंध परिवर्तनों को करके, इसका अर्थ हमने पहले देखा था, यानी छठा सातवां सहस्रों बार करके, ये साता असाता की बात क्यों की, क्योंकि सातवें से ऊपर तो अकेले साता का ही बंध है, परंतु छठे में साता असाता दोनों ही बन सकते हैं, तो असाता के बंध की विच्छुत्ति है छठे में, असाता का बंध छठे तक है, इसलिए उसमें वो उन प्रकृतियों के सहस्रों बंध परिवर्तनों को करके ऐसा लिखा है। विशुद्ध हो मनपरे ज्ञानी हुआ पश्चात उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत संयत होकर श्रेणी को प्राप्त हुआ, तब अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत काशाय पुनरपि सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण होकर प्रमत्त और अप्रमत्त संयत गुणस्थान में पूर्व कोटि काल तक रहकर, यानी उपशम श्रेणी से अंतर शुरू हुआ ना उसका, आठवें से नीचे आया, संयमी हुआ, छठा सातवां चल रहा उसका, तो आठवें का यानी उपशम श्रेणी का अंतर चालू हो गया। पूर्व कोटि काल तक रहकर अनुदिश आदि विमानवासी देवों में आयु को बांधकर जीवन के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर विशुद्ध हो अपूर्व करण उपशामक हुआ। पुनः निद्रा तथा प्रचला इन दो प्रकृतियों के बंध विच्छेद हो जाने पर मरण को प्राप्त हो देव हुआ। अब मेरा प्रश्न ऐसा है, तो इसको इन देवों की आयु बांधने की क्या आवश्यकता थी? डायरेक्ट मोक्ष में भेज देते ना। ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है ना। हमको अंतर बढ़ाना है। यहाँ पूरी कहाँ श्रेणी चढ़ाई है? उपशम श्रेणी को प्राप्त हुआ, और प्राप्त होकर अर्लीएस्ट मरा कब? पहले भाग में मरण नहीं हो सकता है आठवें के, इसलिए पहला भाग पूर्ण होते ही मर गया। यदि मोक्ष भेजना होता, पूरी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरना पड़ता, फिर छठा सातवां करता, और फिर शपक श्रेणी चाहिए, उसके वो आगे वाले आठ अंतर्मूर्त और बढ़े जाते, वो अंतर्मूर्त और ये पूरी श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ने उतरने के सभी अंतर्मूर्त, इतना काल बढ़ जाता। उपशम श्रेणी का अंतर हमको बढ़ाना है। यदि बाद में उपशम श्रेणी चढ़ाकर आता और क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष चला जाता बाय चांस, तो अंतर कम हो जाता, पीछे वाला बढ़ जाता। हमको अंतर मैक्सिमम देखना है। पूर्व कोटि की आयु है, ये पूर्व कोटि की आयु, स्टार्टिंग में वो आठ वर्ष के बाद संयम को प्राप्त हुआ, मन परिज्ञानी हुआ और उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा, तो यहाँ अंतर चालू हो गया। अब अंत में जाकर उपशम श्रेणी चढ़ते ही पहले ही भाग में वो भाग पूरा होते ही मरा, पूरी उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़ाई, हाँ, तो बाद में आयु क्यों नहीं बांधते? पहले आयु क्यों बांधे? हाँ, श्रेणी में बांधता ना आयु। आयु का बंध सातवें तक ही, आयु का बंध देवायु का बंध सातवें तक ही होता है ना, तो इसलिए पहले वो छठे सातवें गुणस्थान में, क्योंकि ये संयमी है ना यहाँ तक, तो पहले ही आयु बांधी, और फिर किसकी बांधी? देवायु बांधी, क्योंकि उपशम श्रेणी वाला मरकर वहीं पर जाता है, अनुदिश अनुत्तर विमानों में जाता है, तो ये पहले ही भाग में मरा और वहां पर गया, यानी आगे अंतर समाप्त होने पर बिल्कुल एक छोटे भाग में, आठवें गुणस्थान का भी सातवां भाग है ना, सातवां हिस्सा ही है, उतने काल में मरा वो, यानी उपशम श्रेणी को प्राप्त हुआ। बाद में ये जो कुछ है वो हम पूर्व कोटि में से माइनस करेंगे। पूर्व कोटि में से भी क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? ये आठवें का प्राप्त होने के बाद वाला इतना पहला भाग, इतना काल, और ये पूर्व के आठ वर्ष, और जो कुछ अंतर्मूर्त श्रेणी चढ़ के उतरने वाले, उतना हमको पूर्व कोटि में से माइनस करने में, बाकी सब परे मन परिज्ञानी है। तो देवों में मन परिज्ञान रहेगा कि नहीं? अरविंद में हमने पहले चर्चा की थी, मन परिज्ञानी उसी भाव में मोक्ष जाता है कि नहीं जाता, तो यहाँ ये जो बात आई, हाँ, उसमें जो रुजुमति है और विपुलमति, तो विपुलमति जाते हैं। हाँ, वो सीधा क्या है, हाँ, का क्या टेढ़ा है वहाँ? रुजू क्यों कहा? सीधा चलते हैं उनको, ऐसा नहीं है। रुजु नाम क्यों दिया? ऐसा नहीं है। हाँ बोलो मंजूताई को। हाँ सरल जो मन वाले ना, जैसे टेढ़े मन वाले और सरल मन वाले, तो उनके मन की जो बात जानते हैं वो रुजुमती है। नहीं समझे? वो विपुल मती, उनको ज्यादा जानने की ताकत है उनकी।
सुनो सुनो,
ये रुजु ये सरल
मन परिय ज्ञानी यानी क्या के सामने वाले जीवों के मन में जो रूपी पदार्थों के बारे में विचार चल रहे उसको जानना। अब ऐसे लोग होते हैं जो मायाचारी है, समझ लो कि सामने कुछ बात करेंगे और अंदर में कोई दूसरी बात रखेंगे। ऐसे टेढ़े मन वाले जीव जो है वो रुजुमती वाले ऐसे को नहीं जानते। वो सीधा सीधा जो जिनके मन में सरलता है ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे।
यानी उनका मन परे ज्ञान इतना जान सकता है, उसी उनकी पावर है। जैसे हमने अवधि ज्ञान में बहुत सारे भेद देखे।
और जो विपुलमती जाल मन परिज्ञानी है वो रुजुमती जो जानता है वो भी जानेंगे और टेढ़े वाले को भी जानेंगे।
विपुल यानी अधिक प्रमाण, विपुल है ना, हमने कहते विपुल
विपुलमती।
पहले हमारी चर्चा हुई थी अरविंद भाई के साथ, मन परिज्ञानी मोक्ष जाता ही है क्या कैसे, तो उसमें फिर वो रुजुमती विपुलमती उसकी बात की। देखो ये मरण को प्राप्त हुआ देव हुआ, नीचे से चौथी लाइन, इस प्रकार 8 वर्ष और 12 अंतर्मुहूर्तों से कम पूर्व कोटि काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार शेष 3 मन परे ज्ञानी उपशामकों का भी अंतर होता है। अब 9वें का अंतर कहना है तो कैसा कहेंगे? हाँ 9वें का अंतर कैसे घटित करेंगे? पहले 9वें से 8वें में आते ही अंतर शुरू हुआ, यहाँ 8वें के पश्चात अंतर शुरू हुआ था और वहां पर वहां पूरा 8वें का लेना और 9वें का कितना काल लेना? अंतर पूरा हुआ और बाद में कितना टाइम रखना? पूर्व कोटि में से माइनस कुछ करना पड़ेगा। देखो हाँ, क्यों इतना क्यों उनको भटकाना? उसमें आते ही मरे तो भी हो गया ना। नौवा 8वें के लिए कंडीशन थी कि एक पूरा भाग तक वो नहीं मर सकते चढ़ने वाला। अच्छा, 9वें में आते ही मर जाए। अभी यहाँ क्या लिखा देखेंगे। इसी प्रकार शेष 3 मन परे ज्ञानी उपशामकों का अंतर, विशेषता यह है कि उनके यथाक्रम से 10 वहाँ 12 लिए थे ना, 10, 9 और 8 अंतर्मुहूर्त तथा एक समय, यह एक समय वाला कौन सा? 9वें में आते ही एक समय में मरा, वो एक समय लेना, ख्याल है ना। 8वें के लिए तो एक पूरा भाग 1/7 ऑफ 8वां गुणस्थान इतना लेना पड़ा क्योंकि उसके पहले मर नहीं सकता था। यहाँ 9वें में आते ही एक समय में मर सकते हैं, तो एक समय इसलिए लिया क्योंकि उस गुणस्थान को प्राप्त होना है, इसलिए एक समय रखा वहां। अब आगे ये याद करने की बात नहीं, एक थोड़ी समझ लेना, भले अपने गड़बड़ घोटाला हो तो फिर ट्राई तो करेंगे ना, जैसे वो उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी उल्टा हो गया अपना, फिर ये सूत्रों के द्वारा हम सही जानकारी ने अपना भी ज्ञान कितना ये हो जाता है। पहले तो हम क्या समझते थे, अरे जितना आत्मस्थिरता बढ़ेगी उतना काल भी बढ़ेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, उसका काल तो छोटा छोटा हो जाता है। हम देखे ना, छठे से भी ऊपर के सभी काल गिनकर भी छठा बड़ा है, छठे से सातवां आधा होता है और सातवें से भी ऊपर के गुणस्थानों का काल जो है, काल की बात चल रही मेरी, वो कम होती जाती है। विशुद्धि ज्यादा है ना वहां पर। अब क्षपकों की बात करेंगे। चदुन्नम खवगाणम अंतरम केवचिरम कालादहोदी नाना जीवम पड़ुच्छ जहन्ने न एक समयम। मन परे ज्ञानी चारों क्षपकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। उक्कस्य न वासपुधत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है, क्योंकि मन परे ज्ञान के साथ शपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का प्रचुरता से होना संभव नहीं है। यानी ज्यादा जीवों को मन परे ज्ञान नहीं है, उनकी अधिकता नहीं है, ये बात बताना चाहते। एक जीवम पड़ुच्छ नथ्यंतरम निरंतरम। मनपर्य ज्ञानी चारों क्षपकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि पुनः वापस लौटकर उसी गुण स्थान में आने की संभावना नहीं है वहां। यह सूत्र भी सुगम है। केवल नानीसु सजोगी केवली ओघम। केवल ज्ञानी जीवों में एक ज्ञान मार्गना चल रही है, इसलिए वो केवल ज्ञान का यहाँ अपना हाँ भेद वहां बता रहे। केवल ज्ञानी जीवों में सहयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है, क्योंकि नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता है। नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा ही 13वां गुणस्थान रहेगा, और एक जीव की अपेक्षा भी वो गुणस्थान छूटा और वापस आए वहां, ऐसा नहीं हो सकता। अजोगी केवली ओघम, यानी केवल ज्ञानियों में दो गुणस्थान सहयोगी और अयोगी। अब ये अयोगी की बात करते हैं। अयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है, यह सूत्र सुगम है। तो कितना है अंतर अयोगी केवली का? हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य, जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 महीने, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ज्ञान मार्गणा समाप्त हुई। अब संयम मार्गणा की बात करेंगे। संयमानुवादेन संजदेशु पमत्त संजद पहुड़ी जाव वसंत कसाय वीदराग चतुमत्थाति मणपज्जव नाणी भंगो। संयम मार्गणा के अनुवाद से संयतों में, पहले संयत इन जनरल लिया, कहां से कहां तक? प्रमत्त संयत को आदि देकर उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ तक संयतों का अंतर मनपर्य ज्ञानियों के समान है। यानी हर एक गुणस्थान की अलग अलग बात। तो प्रमत्त और अप्रमत्त का अंतर कितना होगा नाना जीवों की अपेक्षा से? निरंतर है। और फिर जो हमने मनपर्य ज्ञानियों में जो बात उपशांत कषाय की वगैरह देखी थी, उपशम श्रेणी की, वो सब समझना। लिखा ये नीचे देखो, प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। अब अंतर्मूर्त कैसे लेना? हाँ, संयत।
संयम जीव का तो वो श्रेणी चक्र होता है।
हाँ, वो ले लें। जगन्य काल सातवें में जाकर आने वाला, और उत्कृष्ट पूरी, हाँ, सातवां प्लस पूरी श्रेणी, क्योंकि संयत तो है। अभी संयतों के जब भेद करेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सामायिक छेदों पर स्थापना पलट कर अन्य हो जाएगी ना ऊपर 9वें के बाद। तो अभी संयत इन जनरल बात कर रहे, वो संयत है कि नहीं? संयत कहाँ से कहाँ तक है? तो 11वें तक सभी संयत है, तो श्रेणी चढ़कर भी उतरे तो भी वो संयत ही रहा। संयतों में हम 5 भेद कह रहे हैं ना आगे जाके, सामायिक छदोपस्थापना पर्यार विशुद्धि यथाख्यात सूक्ष्म संप्रहार यथाख्यात। तो फिर उसमें हमें सोचना पड़ेगा। जैसे मान लेते सूक्ष्म संप्राय संयतों की बात करेंगे तो उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा? किसकी अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की के नाना जीव की? अंतर मिलेगा, एक जीव की अपेक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में यथा क्या होगा। इस तरह से हम सोचेंगे आगे। प्रमत्त और ये हमने देखा था, एक जीव की अपेक्षा जगन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। दूसरी लाइन, चारों उपशामकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, और एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण अंतर है, इसलिए उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है। कुछ कम पूर्व कोटि अनेक, हाँ संयमी हो जाएगा, और बीच में कौन सा क्या रहेगा उसका, संयमी रहेगा तो अंतर कहाँ हुआ। उपशम श्रेणी की बात करेंगे तो ठीक है, उपशम श्रेणी, हाँ उपशम श्रेणी की बात करें, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरी फिर संयम में रहा, आप उपशम श्रेणी की बात कर रहे के, हाँ उपशम श्रेणी के अंतर कितना है उत्कृष्ट, एक बार चढ़ के उतरा फिर संयम में रहा और फिर उस भव के अंत में फिर जैसे मन परे ज्ञाने में हमने देखा था वैसे ही। हाँ पर संयम कायम रखकर गुणस्थान का अंतर देखना है तो हमको उपशामक का हमने अंतर देखना है, उपशम श्रेणी का अंतर देखना है, संयम कायम रखकर उपशम श्रेणी का अंतर देखना है। संयम तो रखना ही है, उपशम श्रेणी की अपेक्षा हम देखें। आठवां गुणस्थान समझो आप, आठवें गुणस्थान का अंतर कैसा होगा, पूर्व में संयम के साथ छठा सातवां उसने प्राप्त किया और फिर उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा, उपशम श्रेणी संयत तो सभी है, संयत तो रखना है, संयत तो हमारी मार्गना है, संयत से असंयत नहीं बनाना उनको, और उसमें उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है, अब दोबारा कब चढ़ेंगे, एकदम पूर्व कोटि के अंत में वो लेना है। जैसे मनोपरे ज्ञानी में देखा था वैसे यहाँ पर इनका भी देखना। अब चदुन्नम खवा अजोगी केवली ओगम, चारों क्षपक और अयोगी केवली संयतों का अंतर ओग के समान है, यह सूत्र सुगम है, यानी नाना जीवों की अपेक्षा एक समय और संयत है ना, बस छह महीने, यह सूत्र सुगम है। अब सयोगी केवली ओगम, सयोगी केवली संयतों का अंतर ओग के समान है, नाना और एक जीव की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, यह सूत्र भी सुगम है। अब इनके अलग अलग भेद करेंगे संयतों के, सामाह्य छेदोवट्ठा, हाँ आपका ऐसा प्रश्न है संयम मार्गणा में या सामयिक छेदोपस्थापना में छठे का अंतर कितना होगा, अंतर्मूर्त होगा, छठा सातवा जो है वही उनका अंतर रहेगा, क्योंकि पूरी श्रेणी चढ़कर उतरने में उनकी उनका संयम बदल जाता है, सामयिक छेदोपस्थापना से फिर सूक्ष्म संप्राय हो जाता है, वो उपशम श्रेणी के लिए था, उपशम श्रेणी के लिए था, वो जो पहले हमने अंतर देखा था वो उपशम श्रेणी के लिए। नीचे हम पढ़ रहे थे, हाँ सामायिक छेदोपस्थापना, ऊपर सूत्र पढ़ा पूरा, सामाय छेदोवट्ठावन शुद्धि संजदेशु पमत्त अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, निरतरम हुआ है, निरंतरम करो उसको, र के ऊपर बिंदी, पहले र के ऊपर बिंदी, गयत्थम कहाँ पर, गयत्थम इस सूत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है, उसका अर्थ कहाँ हमने पढ़ा, सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि संयतों में प्रमत्त तथा अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि छठा सातवां गुणस्थान भी निरंतर है और उसमें सामायिक छेदोपस्थापना तो होता ही है। अब आगे, एक जीवम पड़ुच्च झड़ने न अंतोमोत्तम। उक्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक प्रमत संयत जीव अप्रमत गुणस्थान को जाकर सर्व जघन्य काल से पुनः प्रमत संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अप्रमत संयत का भी अंतर कहना चाहिए। छठे में आ गया और वापस ऊपर चला गया। उपकस से न अंतोमोत्तम, उक्त संयतों का, संयतों का यह के ऊपर बिंदी नहीं चाहिए। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक प्रमत संयत जीव अप्रमत संयत होकर दीर्घ अंतर्मूर्त काल तक रह करके प्रमत संयत हो गया, यानी सातवें का ही काल वेरिएबल है। जघन्य से उत्कृष्ट तक उसका जो किसी का कम काल है, किसी का अधिक है, तो छठे का जो अंतर है वो अधिक काल तक सातवें में रहा वो उसका बड़ा अंतर, कम से कम काल सातवें में रहा वो उसका जघन्य अंतर। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, ये प्रमत संयत की बात हुई। और अप्रमत संयत का अंतर एक उत्कृष्ट बता रहे ना, एक अप्रमत संयत जीव प्रमत संयत हो करके सबसे बड़े अंतर मूर्त काल तक रहकर प्रमत संयत हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। यथा योग्य सबसे बड़ा अंतर मूर्त ने यथा योग्य सबसे बड़ा, जो छठे के योग्य बड़ा अंतर मूर्त काल है उसको, छठे का मैक्सिमम काल। हाँ यथा योग्य, वो 48 मिनट वाला उसको नहीं, उसकी बात यहाँ नहीं लेना है, छठे के योग्य। अब ये तो छठे सातवें की बात होगी। अब दोनम उपशामकाणम अंतरम केवचिरम काला दो होदी, कौन से दो उपशामक? वो तो संयम चल रहा है। हाँ आठवां नवा क्यों? हाँ दसवें में संयम बदल जाता है। दोनम उपशामकाणम अंतरम केवचिरम काला दो होदी नाना जीवम पड़ुच झड़ने नहीं का समयम अवगयत्थम। सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन दोनों उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, इस सूत्र का अर्थ ज्ञात है। फिर उपकस्य न वासपुदत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, यह सूत्र सुगम है, क्योंकि उन गुणस्थानों में यही तो संयम होता है। और जो उपशामक का ओग का यानी गुणस्थान का जो अंतर है वही इनका भी अंतर होगा। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतोमोत्तम, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे किसमें? हाँ तो मर के वापस आएगा, उनका संयम कायम रहना चाहिए, मरा तो संयम निकल गया। संयम कायम सामायिक छेदोपस्थापना को कायम रखकर उनको अन्य गुण स्थानों में भेजो। अभी आठवें का अंतर कैसे करेंगे? आठवें का अंतर हाँ बोलो, जो नीचे उतरा है आठवां और फिर छठे सातवें से फिर उपशम श्रेणी चढ़ी है वो उसका अंतर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से उतरने वाला वो अंतर नहीं चलेगा, उनका संयम बदल जाता है, संयम बदल जाता है। टाइम है क्या? देखो हाँ ये दो लाइन पढ़ती हूँ। जैसे उपशम श्रेणी से उतरने वाला एक अपूर्वकरण संयत अप्रमत संयत व प्रमत संयत होकर पुनः अप्रमत संयत हो, अपूर्वकरण संयत हो गया होएगा हुआ है वो हो गया करो, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण संयत का भी अंतर कहना चाहिए। विशेषता यह है इनके पांच अंतर्मूर्त प्रमाण जघन्य अंतर होता है। अब कल बात करेंगे अधिक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे।